औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अब हम अपनी किताब का पहला टॉपिक जो है उसको शुरू करेंगे, और हमारा आज का टॉपिक क्या है? बीमारी, यानी बीमारी कैसी होती है, क्या होती है, ऑल अबाउट बीमारी। मेरा लगा ये टॉपिक ऐसा है कि इससे आज के दौर में तो कोई भी बचा हुआ नहीं है, या वो खुद बीमार है या दूसरों की बीमार पुरसी करनी होती है। समटाइम लोगों से मैं सुनना पड़ता है आज मैं बहुत बीमार हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जितनी अल्लाह सुब्हान तआला की आजकल नेमतें ज़्यादा हैं, खाने अच्छे हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, पोल्यूशन फ्री जगहों में हम रहते हैं, उतने ही ज़्यादा बीमारी का तस्करा बहुत सुनते हैं। तो आइए आज हम इस बारे में देखेंगे कि क्या कुछ है। सबसे पहला टॉपिक है कब्ल अल मर्द, यानी बीमारी से पहले क्या हो। बीमार तो जब अल्लाह ना करे हम होंगे, क्या करना है वो तो सीखेंगे, लेकिन अभी हम सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी, आफियत दी, तो इस वक्त हमारा क्या काम है? तो इसके बारे में सबसे पहला काम हमारा क्या है कि सेहत को बीमारी से पहले और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जाने। हम सब के पास वक्त है अभी। आप देखिए कि बीमारी ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर इंसान की स्किल्स ख़त्म हो जाती हैं, सीज तो हो ही जाती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हम स्लीप मोड में चले जाते हैं, पॉज का बटन दब जाता है। तो आज सेहत में इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत हदीस आपके साथ शेयर करूंगी, और आप सब इसमें से छोटी-छोटी चीज़ों को नोट करेंगे। हज़रत इब्ने उमर यानी अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस को हमारे तक लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, और हदीस है बुखारी में, सही बुखारी की बड़ी मारूफ रिवायत है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा, यानी जैसे यहाँ से शोल्डर से पकड़ा। ये भी एक टीचर्स के लिए बड़ा खूबसूरत तरीका है कि सम टाइम स्टूडेंट को टच करके, उसका हाथ पकड़ के, यानी जब कोई आए तो मसला पूछे तो बड़े कठोर लहजे में इधर उधर रहने के बजाय उसको थोड़ी सी फीलिंग्स दें। स्टूडेंट्स को टीचर्स का हाथ या कंधा नहीं पकड़ना चाहिए, ये एक साइड इश्यू है। बस स्टूडेंट्स हाथ पे हाथ मार देते हैं, आके टच कर देते हैं, बैठ लगता है, एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन मोहब्बत और इफेक्शन के इजहार के लिए कभी कभी, और ख़ास तौर पर आप देखिए कि वन ऑन वन बेस पे ये आए हुए हैं, तो अल्लाह के नबी ने इनके कंधे को पकड़ा, क्योंकि ह्यूमन रेज होती हैं। हम किसी को टच करते हैं ना तो हमारी उसके साथ एक किस्म की बॉन्डिंग हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा आपके अपने बच्चे जिनको आप कोई बात समझाना चाहते हैं तो वो आप चीख रही हैं, वो सुन भी नहीं रहे। तो यहाँ से अब साइड पे, क्योंकि हमारा हर मौजू बच्चों के मौजू पे जुड़ जाता है, क्योंकि हम में से हर एक किसी ना किसी तरह से बच्चों से रेलेवेंट होते हैं, तो बच्चों को भी आप दूर से ना चीखा करें, ओ इधर आओ, जल्दी आओ, खाना खा लो, पी लो, सो जाओ, नमाज पढ़ी ना, इधर से सुनेंगे उधर। जब भी कोई बात कहनी है कम कहें, और जब करें तो प्यार से हाथ पकड़ लें। फिर बच्चे को जब भी कोई, बेटा आप सुन रहे हैं, तवज्जो है, ऐसे साथ प्यार से हाथ से उसको ज़रा रखें, कभी शोल्डर से पकड़ लें, कभी हाँक दें, कभी बच्चे को गोद में बिठा लें, कोई बात नहीं, बड़ा भी हो गया तो खैर है आपका वो बच्चा है, ठीक है, फिर उसके बाद बात करें। तो गोया के सबसे पहले एक टीचर कम्युनिकेशन पैदा करता है। फिर क्या कहा आपने? फरमाया अब्दुल्ला, इनका नाम लिया, दुनिया में मुसाफिर या राह चलने वाले की तरह ज़िंदगी बसर करो, यानी कुन फि दुनिया का अन्नक गरीबन औ आबेरो सबील, यानी दुनिया में कैसे चलो, लाइक अ ट्रेवलर और ट्रांजिट पैसेंजर। हम सब जानते हैं ट्रेवलिंग क्या होती है, चैन ही नहीं आता, घर में बंदे को कुछ भी ना मिले तो सुकून होता है, घर है, और ट्रेवलिंग में क्या होता है, अब इधर अब उधर अब उधर, सामान थोड़ा, चीज़ें कम, मतलब यह है कि इस दुनिया में इतना सामान ना भर लो कि तुम्हें एक जगह ठिकाना करना है, बल्कि एक जगह से थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी। आज हम किसी के बारे में भी सुने ना कि वो आज इधर से उधर उधर है, तो हमारे दिलों में वो शैतान वसवसे डालता है, यहाँ से क्यों गए, उधर क्यों गए, इधर गए, यही ज़िंदगी की प्रैक्टिस है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से यही सिलसिला चल रहा है, और मैं इस पर इतनी खुश हूँ कि जब हम एक जगह पर होते हैं तो हम कहते हैं हमारे घर में है ही कुछ नहीं, पता क्या चला कि वो क्लॉज़ेट भर गए, अलमारियाँ भर गई, और उसके बाद आप देखें कि घर इतना भर जाता है कि कभी पाकिस्तान में किसी से कहें कि मूव होना है तो कई ट्रकों का सामान, फिर अगले घर में जाना, उसकी सेटिंग, और अब जो हमारा सिलसिला चला हुआ, जहाँ ज़रूरत होती है हम उस हिसाब से जाते हैं, और लर्निंग पॉइंट होते हैं ये बहुत सारी चीज़ें। बिलीव मी कि ज़रा दो प्लेटें भी ज़्यादा आ जाती हैं ना एक जगह रहते हुए, तो जब कहीं दूसरी जगह जाएँ तो गुस्सा आता है कि ये दो प्लेटों की ज़रूरत क्या थी, एक ही ले लेते, या ये टूट ही जाए तो अच्छा है, रियली बिलीव मी। तो फ़ायदा क्या होता है, और ये ज़िंदगी हमारे असलाफ की थी, वो घर नहीं बनाते थे, क्योंकि जब बंदे का घर बनता है ना तो दिल में घर आ जाता है, आप कह लें कि घर दिल में घर कर जाता है। तो लिहाजा मुसाफिर की ज़िंदगी का मतलब ये है कि बेसिक्स नीड, अच्छी बात है, ज़रूरत का रखो, साफ़ सुथरा रखो, मैचिंग भी रखो, लेकिन ऐसी चीज़ें घर में ना रखो कि एक एक साल से निकाली नहीं, और ऐसे कपड़े जो एक दफ़ा पहन के छोड़ दिया, पहनने ही नहीं है, और ऐसी ज्वेलरी के जिसको सिर्फ आप बैंकों में रख दें, इट्स नॉट इस्लामिक वे। बहरहाल, ये हमारा टॉपिक है तो सही, सच्ची जो बात है कि जब तक हमें जीना नहीं आएगा, हमें मरना कैसे आएगा। लेकिन कहा कि जस्ट लाइक अ ट्रांजिट पैसेंजर, फिर आप देखिए कि ट्रांजिट पैसेंजर को समझ लें, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी ये लंदन में, आज आप मैनचेस्टर में, पाकिस्तान जाना हो, बीच में दुबई में 4 घंटे का स्टॉप ओवर हो, क्या दिल चाहता है कि उस वक्त बहुत कुछ सामान हो हाथों में? हैंड कैरी भी बुरा लगता है, कहते हैं हैंड फ्री जाओ, क्योंकि अभी इधर से निकले उस जहाज़ में बैठ जाना है। तो ये दुनिया ट्रांजिट पैसेंजर है, ये दुनिया ट्रांजिट लाउंज है, और हम ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं कि कैसे हमने राह चलते हुए बस इधर से गुजरना है। वो कहते हैं ना कि मंजिल नहीं, गुजरगाह है। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाए कि हम इस ज़िंदगी को इंजॉय करें। हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम सिर्फ चीज़ों की खिदमत करते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो बहरहाल ज़िंदगी को बेसिक्स पे रखें। चुनाचे इब्ने उमर कहा करते थे, अब ये आगे उनका कॉल है, कहते हैं कि अगर शाम कर लो तो सुबह का इंतज़ार ना करो, और अगर सुबह कर लो तो शाम का इंतज़ार ना करो। हमारा इस बात के मुताबिक है कि ये सोचें कि आज शाम तक मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, और अगर शाम आ गई तो सोचें कि सुबह किसने उठना है। और हमारा हाल क्या है? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। थोड़ी देर पहले किसी से मेरी बात हुई, एक बुज़ुर्ग खातून है, तो वो बता रही हैं मेरा पासपोर्ट बन गया है और 10 साल का बना है। तो फिर साथ खुद ही कहने लगी कि पासपोर्ट तो 10 का बना है, मेरा पता नहीं कितना वक्त है। तो हम अमूमन लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहते हैं ना, लेकिन इस दुनिया से जाने का वक्त नहीं पता। तो हमेशा ज़िंदगी को आज पे रखिए। आप अपने घर को देखें, अपनी ज़ाती चीज़ों को देखिए, अपने नेकी के कामों के करने और ना करने को देखिए। मोस्टली हमारी ज़िंदगी फ्यूचर के लिए होती है। ये कपड़े मुस्तकबिल में काम आएंगे, ये रख लो कहीं काम आएंगे, सेल लगी है तो ले लो, गिफ्ट देंगे, ये बच्चियों के काम, ये बच्चों के काम। और सम टाइम हमारी ज़िंदगी में फ्यूचर के लिए इतना कुछ हो जाता है कि हाल की चीज़ ही नहीं मिलती। जब कभी वक्त आता है तो चीज़ क्यों नहीं मिलती? कि नहीं है, नहीं, टू मच है इसलिए नहीं मिलती। दो ही चीज़ें ना, है कोई नहीं तब नहीं मिलेगी, या बहुत है तो नहीं मिलती। भी कहते बाजार से ले आप, कौन ढूंढे? चीज़ नीचे की नीचे होती, पाइल अप पाइल अप। तो ज़िंदगी गुजारने का ये खूबसूरत तरीका नहीं है। अपने लिए जिए ना कि इन चीज़ों के लिए जिए। बेजान चीज़ें, ये कपड़े, ये जूतियाँ, ये पर्स, ये बर्तन, ये आपकी खिदमत करें, इंजॉय करें, खुद अच्छे बर्तनों में खाएं। किसी की बात फिर कोट करूंगी जो बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारे घर में 1 साल पड़ी रहे, 1 ईयर, और तुम इस्तेमाल ना करो, कई चीज़ें होती है ना, तो वो कहते हैं कि इसका तो तुम्हारी नहीं है, वो किसी ऐसे को दे दो जिसको उसकी ज़रूरत है। और आप ऐसी क्लीनिंग करते जाइए, आप देखेंगे कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत भी होगी और आसान होगी। फिर कहते हैं, सेहत को बीमारी से पहले और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। आप देखिए कि सेहत इतनी बड़ी चीज़ है कि हमारे पास होती है तो कदर नहीं आती। सर में दर्द हो जाएगा ना, तो मैं इस तरह नहीं फोकस होके बढ़ा सकूंगी। ये अलग बात है कि सम टाइम पढ़ाते हुए बीमार भी हो ना हम लोग, तो बाद में भूल जाता है, फिर पढ़ाने के बाद याद आता है, अरे शुरू में तो सर में दर्द था, गले में दर्द था, ये कुरान का एक मौजज़ा है। लेकिन आप अमूमन देखते हैं कि ज़रा सी तकलीफ हमें फोकस नहीं रहने देती। और इसी तरह से आप देखिए कि आज ज़िंदगी है, कल नहीं होगी। कौन सी आपने सबसे लास्ट डेथ देखी या सुनी? सोचिए, 2 दिन पहले 2 डेथ हुई हमारे क्लास की के लोगों में, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक के शायद फादर इन लॉ की डेथ हुई और एक के हस्बैंड की, फूफी की। और मुझे भी जब पता चला, तो ये सवाब का काम भी है और एक दूसरे पे ये मुसलमान का हक होता है, तो मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। तो यकीन करें कि हम एक घर में गए, वहाँ वो बुज़ुर्ग फौत हुए हुए थे, उनके घर में कंडोलेंस की, जो भी उधर मामला था, फिर उधर से उठ के दूसरे घर गए। तो उन्होंने मुझे, जो दूसरा घर था, तो उन्होंने मुझे पहले ही फ़ोन पे कहा कि हमें पता चला आप आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा दर्स भी दे दें। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं कभी भी नहीं मना करूँगी। इसी तरह का ये कमरा था, जैसे हम आए, भरा हुआ था लोगों के साथ, सेकेंड डे था शायद। और मुझे ये भी बता दिया उन्होंने कि अभी दफन नहीं किया, कल होगा। हम जब कमरे में आके बैठे, कमरा बहुत भरा हुआ था उस दिन भी, तो वहाँ मुझे ऐसे अंदर आती नज़र पड़ती, तो ये इधर अंगीठी है, तो इसी टाइप की एक चीज़ इस साइड पे थी और उसके ऊपर काले रंग का ऐसे कपड़ा था जैसे कवर होता है ना। बिलीव मी के शुरू में मैं बैठी, जब दर्द शुरू किया तो मैंने नोटिस भी नहीं किया। थोड़ी सी देर के बाद मुझे फीलिंग आई कि ये कफन है, फिर जो मेरी फीलिंग्स थी कि आज इस हॉल में हम सब जिंदा हैं और डेड बॉडी भी इधर ही है, वो उन्होंने उनको नहला धुला के, तो उधर ही ओवरनाइट था, तो मैं दर्स देते हुए एकदम बिल्कुल, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी और अल्लाह ना बुलाए एग्जेजरेशन, जितनी ये चौड़ी चीज़ है ना, ये जो आपकी सेटी इधर रखी हुई है, इतना ही चौड़ा और इससे थोड़ा सा 1 फुट लंबा, जस्ट दिस, इतनी सी जगह में वो कफन में था। अब पढ़ाने के दौरान मुझे फीलिंग क्या शुरू हो गई कि ज़ाहिर है लोग बैठे हुए हैं, थक भी जाते हैं, लंबा दर्स नहीं था लेकिन बैठे हुए थे, हम फितरी बात है, सांस लेते हैं, हिलते हैं, अभी आपने सर हिलाया, अभी आपका हाथ हिला ना, तो मैं ये सोचूं कि जब से हम आए हैं ये इसी इतने पतले से ताबूत के अंदर है, हिली नहीं, और इन्होंने कितनी कम जगह ली हुई। तो ये है ज़िंदगी, पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे फीलिंग आई मुझे कि मेरे और इनमें क्या फ़र्क है, इस कमरे में एक ऐसी सिस्टर मौजूद है जिनकी रूह चली गई, जिस्म मौजूद है, तो आज मेरे अंदर तो रूह मौजूद है, आज मैं जो कर सकती हूँ कर लूँ, और हम कभी सोचते भी नहीं कि ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है, हम कभी किसी के लिए 1 मिनट अपनी ज़िंदगी का ज़ाया ना करें अगर हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए। तो क्या हमने सीखा कि ज़िंदगी को और सेहत को गनीमत जाने, कल बीमारियाँ आने वाली हैं, कल मौत आने वाली है, जो भी होगा आज उससे बचें। नबी सल्लम की एक और बड़ी खूबसूरत रिवायत है हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हो से, और रिवायत ये भी बुखारी की है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत और फरागत, यानी हेल्थ एंड फ्री टाइम, यानी आपके पास कोई काम नहीं, आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, दो ऐसी नेमतें हैं जिनके मामले में अक्सर लोग खसारे में हैं। नेमतानी मखबूनुम फीहिमा कसीरुम मिनन्नासी, कौन सी हैं? असेहत वल फराग, यानी दो नेमतें ऐसी हैं जब हमारे पास होती हैं तो हमें उनकी वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन जब वो नहीं होती तो हमें एहसास है, और सच है कि वो सेहत है। सेहत नेमत है, इसको कैसे देखना है? किसी हॉस्पिटल के बाहर के लाउंज में सिर्फ चले जाए, यकीन करें तड़पते हुए लोग, लंगड़ाते हुए लोग, कराहते हुए लोग, चीखते हुए लोग आपको दिखेंगे, कभी किसी अपने प्यारे के साथ आपको हॉस्पिटल में जाने का इत्तेफाक हुआ, ऐसे लगता है सारा शहर बीमार हो गया, ऐसी है ना, फिर पता चलता है कितनी बड़ी नेमत है। आप देखिए कि इस बात को शुरू हुए कितने मिनट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, कल का पूरा दिन बहुत सेहत से गुजरा, परसों गुजरा, सोचे मुझे कब लास्ट टाइम मैं बीमार हुई, अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, आफियत है, सुबह शाम की दुआएं पढ़ेंगे, खैर और आफियत में रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा, लेकिन जब सेहत है तो उसको वैल्यू कीजिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि फरागत की यहाँ बात हुई, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी। टाइम, मोमिन का जो टाइम है ना उसकी करेंसी है, टाइम इज़ नॉट टू किल, टाइम इज़ टू यूज़। बस कहते क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम इज़ नॉट टू पास, टाइम तो आपकी दौलत है। इस पे हमारे पास एक पूरी सीरीज़ है ऑनलाइन पे मौजूद है, अगर आप ऑडियोज़ के सेक्शन में जाके नीचे अगर आप असॉर्टेड चीज़ों में देखें तो टाइम मैनेजमेंट, एक पूरी सीरीज़ है, टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि आप वक्त ज़ाया करती हैं और आपको नहीं समझ आती कि कौन से आपके टाइम वेस्टर्स हैं, फिर इसी तरह इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट और इस तरह की चीज़ों में, हम 2 दिन से एक जगह पे बिज़ी थे, शादी थी और आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें होती है ना, तो जब बहुत सारे काम हो, तो मैं किसी से बात कर रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए काम आपके पास इतने हैं ना, आप ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जस्ट थिंक, 2-3 मिनट सोचें व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, डू दिस फर्स्ट, जब आप अर्जेंट थिंग और इम्पॉर्टेंट कर लेंगे ना, देन गो टू द इम्पॉर्टेंट, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट और उसके बाद वर्थलेस पे बात करें। तो बहरहाल उस सीरीज़ में बहुत सारी टिप्स हैं, अगर किसी को अपने साथ, अपने बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, और मैं दुख के साथ कहूँगी कि आज के दौर का ये प्रॉब्लम है, जितने गैजेट्स हमारे हाथों में आगे टाइम किल हो रहा है, आप एक कमरे में 10 लोगों को बिठा दें, 10 लोगों की अपनी ज़िंदगी है, वो अपने फ़ोन से खेल रहा है, वो अपने से खेल रहा है, आप ट्रेन के गड्ढे में बैठ के देखें, अगर आपके कोच में 20 लोग हैं ना, तो उनमें से कम अज़ कम 15 लोग जो है ना वो फ़ोन के साथ खेल रहे, कोई खुद ही हंस रहा है, कोई खुद ही स्माइल कर रहा है, कुछ है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम पीपल आर वेस्टिंग टाइम चैटिंग ये वो दिस एंड दैट, तो टाइम को यूज़ कीजिए। हम सब तो कम अज़ कम जो इस वक्त बैठे हैं, हमें तो इसके लिए एक बेस्ट मेथडोलॉजी रखनी चाहिए, गेट मोर फ्रॉम लाइफ, हमारी एक सीरीज़ है लेक्चर्स की, गेट मोर फ्रॉम लाइफ, क्योंकि आज ज़िंदगी है कल नहीं रहेगी, मैं जो कर सकती हूँ आज करूँगी, मैं कल नहीं करूँगी, आज तक मैंने कुरान क्यों नहीं पढ़ा, कभी सोचा? इतने साल, 30 साल के तो अराउंड सब होंगे ना, उससे ऊपर होंगे या नीचे होंगे, या उससे भी ऊपर होंगे, नो प्रॉब्लम। क्या मैंने इस पूरे वर्क को इतना अच्छा मैनेज किया कि मैंने कुरान पढ़ा, मैंने सीखा? तो नहीं सीखा तो मेक प्लान्स, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जाने हम सब। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लम की एक और बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि इख्तनिम खमसन कबला खम्स, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से गनीमत जानो पहले, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे टॉपिक से है वही रख लेते हैं, ज़िंदगी को मौत से पहले। मौत आ जाएगी तो कोई नहीं उठ सकेगा, ना उठा सकेगा। आज फजर के लिए नहीं उठे, कल जिंदा न रहे तो फजर नसीब नहीं होगी। ज़िंदगी को मौत से पहले। दूसरी चीज़ सेहत को बीमारी से पहले। अगली चीज़ जवानी को बुढ़ापे से पहले। आज जवानी है तो हम कहते हैं इसको तो बस वेस्ट करो, जवानी तो बस फन का नाम है, हैं ईट ड्रिंक बी मैरी। नहीं, जवानी को यूज़ करें, अपने जवानों को लाएं। क्यों वो सोते रहें? आधा आधा दिन जब सोते रहेंगे तो बाकी वक्त की बरकत कहाँ होगी? फिर इसी तरह आप देखिए कि अगली चीज़ क्या है जिसको इंसान गनीमत जानेगा, कि आज आपके पास फरागत है, कल मसरूफियत होगी। ज़िंदगी को मौत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, और फरागत को मसरूफियत से पहले, और आखिरी चीज़ दौलतमंदी को गुर्बत से पहले। इससे पहले कैसा फ़क्र आ जाए, गुर्बत आ जाए कि हमारा दिल भी तड़पे तो हम कुछ कर ना सकें, आज कर लीजिए। माल कितना है लेकिन हम उसके साथ नेकियां लेने की बजाय उससे गलत चीज़ें ले लेते हैं, समटाइम वेस्ट करते हैं। अब ये तो चीज़ें वो है जो बीमारी से पहले की, कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम बीमारी के आने से पहले कर सकते हैं। उसमें अगली चीज़ नोट कर लीजिए क्या है, कि हम दुआ करें। किस चीज़ की? कि अल्लाह मुझे आफ़ियत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत दुआएं सिखाई, जिन दुआओं में ये है कि अल्लाह मुझे आफ़ियत दे। एक दुआ मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा, दोहरा ले। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारी सिस्टर्स सुबह शाम की दुआओं में इन दुआओं को पढ़ती होंगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रुहु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह और शाम तीन दफ़ा ये दुआ पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसको पूरा दिन, यानी सुबह में पढ़ी है तो दिन, और अगर रात को पढ़ी है तो पूरी रात अल्लाह सुबहाना ताला उसको हर किस्म के फितने से बचा लेता है। तो मैं और आप बीमारी के आने से पहले ये दुआएं पढ़ेंगे तो किसी किस्म का जो फितना होगा वो हम उससे बच जाएंगे ना। एक और दुआ दोहरा लीजिए, वो भी तीन दफ़ा सुबह शाम की दुआ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाही हित्तामाती मिन शर्री मा खलक। इसका भी तर्जमा यह है कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ हर उस मखलूक के शर से जो अल्लाह ताला ने पैदा की। जिन, आसेब, नजरे बद, हसद, रकाबत, बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं। इसी तरह आप देखिए हम गाड़ियों में बैठते हैं, कितने हादसे हो सकते हैं। तो ये दुआएं मांगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक तीसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी जू जुनूनी जीम पे पेश है वल जुनूनी वल जुजामी वसैल अस्काम। दुआएं आपको सारी बुक्स में मिल जाएंगी लेकिन इस वक्त सिर्फ एक एक दफ़ा बोल के एक तो प्रोनाउंसिएशन सेट कर लें और इसको फिर लिस्ट में डाल लें कि ये दुआएं मैंने पढ़नी है और याद करनी है। इस दुआ का तर्जमा क्या है कि अल्लाह मैं आपकी पनाह में आती हूँ लिप्रसी से, बर्स होता है ना कोढ़ का जो मर्ज़ होता है। फिर इसी तरह जुनून से, यानी मैं क्रेज़ी ना हो जाऊँ, मेरा दिमाग ना ख़राब हो जाए, और जुजाम से, ये भी एक स्किन डिजीज़ होती है जैसे वो फुल बहरी सी होती है, और इसी तरह हर किस्म की बुरी बीमारी से मैं बचना चाहती हूँ। आज तो देखिए बच्चों को भी ऐसी बीमारियाँ अल्लाह के हुक्म से लग जाती हैं, कभी नाम भी नहीं से होते, फ़लाँ डेफिशेंसी, फ़लाँ कमी, फ़लाँ कमी। तो हमने इंशाल्लाह ऐसी तमाम बीमारियों से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी है। एक और दुआ है जो हमें इंशाल्लाह ताला ऐसे वक्त में फ़ायदा देगी, उसको भी दोहरा लीजिएगा। और अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें आफ़ियत भी दे और सेहत के साथ इन सारी चीज़ों को रखे। पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफियतिका व फुजाअति निकमतिका व जमीई सखतिका। इसका तर्जमा क्या है? ए अल्लाह, बेशक मैं आपकी पनाह में आती हूँ नेमतों के जवाल से। सेहत नेमत है ना, वक्त नेमत है, आफ़ियत नेमत है, तो अल्लाह मैं इससे तेरी पनाह में आती हूँ और तेरी आफ़ियत के पलट जाने से। आफ़ियत क्या होती है? यानी अब सब कुछ ठीक है, वी आर इन हैप्पी मूड। एक लम्हे में एक बुरी बात भी कोई कह देगा ना तो हमें दुख होगा, कोई अल्लाह ना करे एक दुख की खबर हम सुन लें तो हम रोने लग जाएंगे। तो आफ़ियत क्या है? इज़ वेरी कूल, एवरी थिंग इज़ कूल। तो अल्लाह मैं चाहती हूँ कि मेरी आफ़ियत ना पलटे, कि कोई ऐसी बुरी बात ना मैं सुन लूँ कि जो मुझे अपसेट कर दे। फिर वह फुजाती नेकमती का, जिसके अंदर क्या है कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए मेरे ऊपर कि जो सडन हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन यू फ्रॉम दी डिक्लाइन ऑफ दी ब्लेसिंग्स, नेमतों के जवाल से, द चेंज ऑफ आवर स्टेट ऑफ वेल बींग, द सडन ऑनसेट ऑफ योर पनिशमेंट। यानी मैं कोई ऐसा गुनाह ना कर दूं कि तू अचानक मुझे पकड़ ले। करते हैं हम ऐसे गुनाह, बहुत सारे करते हैं। फिर इसी तरह हम कहते हैं उसमें वह जमी सखती का, कि अल्लाह मेरे ऊपर तेरा गुस्सा ना आ जाए, तेरे गुस्से से बचती हो। तो आप देखिए, ये जो बीमारियां और तकलीफ़ें भी आती हैं ना हमारे ऊपर, ये इसीलिए आती हैं कि हम इसमें अल्लाह को नाराज़ कर चुके होते हैं। जिन चीज़ों की मोस्टली में तकलीफ़ होती है वो कौन सी हैं? आंखें, कान, सर, और ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हमारी अभी ठीक काम कर रही हैं ना, तो ठीक है। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर मैं देखना छूट जाए, अगर मैं ब्लाइंड हो जाऊं तो सारी दुनिया मेरे लिए अंधेरी, सुन ना सकूं, बोल ना सकूं। तो एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, उसको भी मेरे साथ दोहरा ले, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि इन अपने आज़ा के शर से अल्लाह की पनाह में आओ। पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि समई। साथ ही तर्जमा कर लूँ तो ईजी लगेगा, के अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ अपने कानों के शर से। यदि मेरे कान कोई गलत चीज़ ना सुने। और इसके साथ आप एक साइड का पॉइंट, दो पॉइंट अभी बताएं ना। पहली चीज़ कि बीमारी से पहले करने की क्या, किसको गनीमत जानो, और दूसरी अब हम कर रहे हैं कि बीमारी के आने से पहले दुआएं मांगें। तीसरा पॉइंट साथ ही इस दुआ के नाते से आप नोट कर लीजिए कि अपने जिस्म के अज़ा को गुनाहों से बचाएं, क्योंकि कुरान पाक में आता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम। तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है ना, ये तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा है। हम कानों से कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह कानों को बीमार कर देते हैं। हम आंखों से कोई गुनाह देखते हैं तो आंखें बीमार हो जाती हैं। तो इस दुआ में हम यही कह रहे हैं कि अल्लाह आऊज़ु बिका मिन शर्रि समई, मेरे कान गलत ना सुने ताकि मेरे कानों में दर्द ना हो। अब कानों का शर क्या है? गीबत, चुगली, बुख्तान, इल्ज़ाम और ख़िलाफ़ शरा चीज़ें, नाफरमानी की चीज़ें। पूरी सूरह हुजरात की तफसीर सुन लें तो आपको मिन शर्रि समई का मतलब समझ आ जाएगा, कानों की बुराई। अगली दुआ पढ़िए, व मिन शर्रि बसरी, और अल्लाह मेरी आँखों के शर से मुझे बचा। इसमें आप सारे आँखों के गुनाह सोच लें। हमने एक कोर्स किया था तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यही टॉपिक था। तो अगले दिन एक स्टूडेंट बहुत खूबसूरत एक्टिविटी बना के लाई, उन्होंने ऐसे आंख बनाई हुई, फिर उसके ऊपर पलके होती है ना, पलके, और हर पलक के ऊपर बारीक बारीक वो गुना जो हम आंखों से करते हैं वो लिखे हुए थे। वॉचिंग द बैड थिंग्स और लाइक दिस, और गैर मर्दों को देखना और लाइक दिस, आंखों के ऐसी चीज़ें जिससे हमें फीलिंग आए कि हम अपनी आंखों से क्या करते हैं। फिर एक और स्टूडेंट थी, तो एक जगह हम जुबान की बात जो पढ़ने लगे तो उन्होंने जुबान बनाई और उसको आगे ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में सांप बन गए। पीछे से जुबान थी और आगे ऐसे छोटे छोटे सांप हैं, और हर सांप के ऊपर उन्होंने फिर कहीं झूठ और गीबत और बुख्तान ये सब लगाया हुआ था। अब आप देखिए, सिर्फ इसको विजुलाइज करने से तसव्वुर में कैसा आ रहा है, लेकिन जब हम गलत चीज़ें बोलते हैं तो क्या वो सांप नहीं होते? हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हकीकत में वो होता है। तो अब इस एहसास को रखते हुए अगली दुआ पढ़िए, व मिन शर्रि लिसानी, और अल्लाह मैं अपनी ज़ुबान के शर से तेरी पनाह में आती हूँ, मेरी ज़बान झूठ ना बोले, गीबत ना बोले और किसी की बुराई ना करे। फिर अगला पढ़िए, वमिन शर्रि कल्बी, और मैं दिल के शर से तेरी पनाह में आती हूँ। दिल का शर क्या है? दिल में अल्लाह के सिवा से मोहब्बत, दिल ही तो सारी बात है। दुनिया की मोहब्बत आखिरत की बजाय, गैर महरम की मोहब्बत, लड़कियाँ किसी लड़के के और लड़का किसी लड़के की मोहब्बत में इतना भर जाए कि वहाँ हर वक्त उसी का तसव्वुर हो, तो दिल के अंदर हर गुनाह की मोहब्बत जो है, अल्लाह तेरी पनाह में आती हूँ। आखिरी ये दुआ का हिस्सा, वमिन शर्रि मनीजी, और अल्लाह मैं अपनी मनी यानी वो मादा जिससे बच्चे की तख्लीक है, इशारा है प्राइवेट पार्ट के शर की तरफ। तब आप देखिए कि जब हम इस किस्म की दुआएं मांगते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला के हुक्म से हम सबको बीमारियों से अल्लाह ताला बचा लेगा। इस तरह बहुत खूबसूरत और दुआएं, इस पे फिर मैं बाकी यही कहूँगी कि अगर आप किताबु दुआ जो इसी सीरीज़ की बुक है उसमें से दुआओं में कोई ऐसा टॉपिक जिसमें सुबह शाम की एक दुआएं पूरा टॉपिक एक एक दुआ एक्सप्लेन की हुई है, आप वो सुनना शुरू कर दें, तो उसमें आपको हर वो दुआ जो इस किस्म की है जिससे आपको अपनी बीमारी से मुतल्लिक है तो वो अपने लिए चूज़ करें। हर एक एक अपना इशू भी होता है ना। जैसे एक बड़ी खूबसूरत दुआ मेरे सामने आ गई, जी मैं दोहराती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें भी हमारे लिए क्या मैसेज है। पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ किससे? अज से। अज क्या होता है? बेचारगी, बेचारा बनने से, कि मैं ह्यूमिलेट ना हूँ, ऐसा ना मेरा हाल हो जाए कि लोगों को मेरे ऊपर रहम आए। आप देखिए बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती है ना जिसमें बंदे को रहम आता है दूसरों को उस पर, अल्लाह मेरा ये हाल ना हो। फिर आगे वल कसली, और सुस्ती से, सुस्ती कितनी बड़ी बीमारी है, इससे पनाह मांगे, क्योंकि ये सुस्त रहना भी अपने आप को बीमार करना होता है। बस लोगों का प्रॉब्लम ही सिर्फ सुस्ती होती है, हम देखी से दूर रह जाते हैं। गफलत के असबाब, हमने 2-3 दिन पहले अपनी एक क्लास में पढ़े कि गफलत कब आती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा सबब जो था वो सुस्ती है। पल जुबनी, बुखल से, स्टिंजीनेस से, माल की मोहब्बत भी बंदे को बीमार कर देती है, उसको कमाने में लगा हुआ लगा हुआ लगा हुआ, सेहत ख़राब हो गई, खाना नहीं खा रहा, कुछ और कर रहा है, कहीं कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहा है, इन सब चीज़ों से इंसान अपने आप को बचाए। फिर उसके बाद आप देखिए, वल हरमी वल बुख्ली वाउज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व मिन फितनतिल महया वल ममात, यानी दुआएं तो बड़ी खूबसूरत है लेकिन फिर हम थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन बस अपने लिए ये सोच लीजिए कि मैंने बीमारी से पहले बेहतरीन दुआएं मांगनी है जिसके साथ मुझे अल्लाह ताला दूसरी चीज़ों से हटाए। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए कि बीमारी से पहले करने के कामों में जो काम है वो क्या है, कि खाना पेट में जगह रख कर खाना है, यानी आप ये कह लीजिए कि ईटिंग हैबिट्स जो उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेलेवेंट करना है। आप 3 हिस्से जिस्म के करते थे, आपने फरमाया कि एक हिस्सा खाना, दूसरा हिस्सा पानी, और तीसरा खाली छोड़ दो हवा के लिए, यानी जस्ट लाइक बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन हो। हम जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना तो हम बीमारियों को दावत देते हैं। इसमें बहुत लंबा टॉपिक है, इसके अंदर आप सब कुछ देखें, यानी मैंने इसको एक हिस्से में इसलिए पाइल अप कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके इख्तियार करने हैं खाने के। खाते कैसे थे? सीधे हाथ से खाते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते थे, बैठ के खाते थे, खाने को देखते हुए खाते थे, पीते हुए पानी के अंदर फूंकते नहीं थे, पानी पी रहे हैं तो ग्लास के अंदर देखिए 3 घूंट में पीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि हर वक़्त नहीं खाते थे। फिर इसके बाद आप देखिए कि रात को सोने से पहले नहीं खाना, ये सारी ईटिंग हैबिट्स हैं, और थोड़ा सा पेट रख के खाली छोड़ देना, फिर उसके बाद वॉक करना, यानी अच्छी हैबिट्स अपना है। ये जो बाज़ दफ़ा हम बच्चों के लिए परेशान रहते हैं ना कि बीमार रहते हैं या हम बीमार हैं, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आज हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग ऐसा है कि वो हमारे बच्चों को बीमार कर रहा है। जंकी फूड और फैटी फूड और जो आर्टिफिशियल थिंग्स, कैन यू बिलीव, मैं कुछ चीज़ें जो मेरे सामने अक्सर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं ईमेल्स में, उसके बाद तो दिल ही नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें जो बाज़ार की स्टोर होती हैं, आपको पता है कि खाना तो वही है, लेट्स सी अगर बाज़ार के फ्रोज़न बर्गर आपको मिलते हैं जिसको घर आके आप फ्राई कर लें या ग्रिल कर लें, और आप देखें कभी उस मीट की शक्ल बदली होती है। किसी ने 2 चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली देखी, चूँकि मौजू है तो आपको बताऊंगी। आप देखिए कि बाज़ार से आपको आजकल वो मीट मिलता है ना जो जैसे रोल बन, जिसको आप हॉट डॉग कह लीजिए, या ऐसे टर्क होते हैं कट कट है जी, सलामी सलामी कह लीजिए, या कुछ और लूप्स थे, उन्होंने बताया कि आपने कभी सोचा कि इतना बड़ा लूप कैसे बन गया, और क्या ये कोई बकरे ऐसे स्पेशल हैं जिनके पेट से निकालते हैं? उन्होंने क्या दिखाया कि गोश्त बिल्कुल चर्बी वाला छोटा बड़ा जैसे चॉप्ड होते हैं ना, उसको डालते हैं। फिर वो आदमी, उसके हाथ में एक गम पाउडर था, वो उस गोश्त के अंदर गम डालता है, ऐसे पाउडरी फॉर्म है। फिर उसको एक प्लास्टिक में रैप करके, तो वो कहता है कि वो आपस में ग्लूड मीट होता है ये। फिर उसने बाद में, देखने में हमें वो एक लगता है, लेकिन उसने उसको सारा करते हुए दिखाया कि ये कंपनीज यूज़ करती हैं, और जब वो गोश्त के टुकड़े आपस में च्युइंगम की तरह जुड़ जाते हैं, फिर उसको उसकी शेप का प्रेस करके काटते हैं। फिर उसने वो एक लूप निकाला, उसके कटिंग था, तो उसके बाद उसने यूं ऐसे ना खींचा, तो आप देखें कि ज़ाहिर ग्लू तो लगी हुई थी, जब उसने यूं किया ना, तो वो लेसे लेसे बन के ना तो अलग हो गया। अब आप सोचिए, जिस्म के अंदर ग्लू जा रहा है, कैन यू बिलीव। ये बटर जो आजकल हमारे हर घर के टेबलों पे होता है, जिसको आप स्प्रेड बटर कहते हैं, दिस एंड दैट, आपको पता है कि ये क्या है? सिर्फ 1 डिग्री इसको और गर्म करें ना अगर ये लोग, तो ये प्लास्टिक बन जाता है। इट्स जस्ट लाइक प्लास्टिक। मैं तो सोच के भी इसको मेरा दिल नहीं करता खाने को, कि ये जस्ट लाइक प्लास्टिक। यानी इतना पेस्चराइज फूड है इस किस्म का, कि जो हमारे जिस्म में न जाने क्या कुछ लेता है। फिर इसी तरह एक और जगह मैंने पढ़ा, मेरा हाल है कि वीडियो को देखी, आई डोंट नो, लेकिन ये सारे फैक्ट्स मौजूद हैं, कि जो आज के दौर में चीज़ें फ्रीज होती है ना, तो मोस्टली इसके अंदर इंसेक्ट्स, ये जो कीड़े मकोड़े बरसात में दिखा, इन इंसेक्ट्स को ड्राई करके फिर इनके अंदर कुछ ऐसा, जैसे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा देर रखने के लिए स्टरलाइज करते हैं, ये क्या बोलते हैं, जो बहुत लॉन्ग टाइम चीज़ें फिर रह जाती हैं जी, प्रिजर्व करने के जो चीज़ें हैं ना, ये कीड़े मकोड़ों के असर से बनते हैं। आप खुद सोचें, एक नेचुरल चीज़ आप अगर फ्रेश मीट इधर रख दें, तो 6 घंटे पड़ा रहे तो हो सकता है स्मेल आ जाए, रंग बदल जाए, कीड़ा पड़ जाए, तो ये 6 महीने पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता, ये दूध ख़राब नहीं होते। तो जितना नेचुरल डाइट पे आप लेंगे आएंगे, अपने आप को फील करेंगे, आप सेहतमंद होंगे। आज भी वो गांव देहात में जो मट्टी वाला पानी अक्सर पीते हैं, डिस्टिल वाटर तो छोड़ें, उनके तो खाने के अंदर कितनी मट्टी है, वो सेहतमंद है। तो हमारे माशाल्लाह बच्चे जो हमारे अरमानों से पलते हैं, आप देखिए कि उन सब के साथ कितनी बीमारियां हैं। तो कोशिश करें अपने बच्चों को जंकी फूड ना दें, ये चिप्स और बर्गर्स और लाइक दिस, इनको बिल्कुल नेचुरल डाइट पे लाएं, फ्रेश सब्जियां खिलाएं और इस तरह की चीज़ें, कि जिससे इंशाल्लाह आप महसूस करके देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम इन चीज़ों पे रहेंगे तो बेहतर होगा। फिर अगली चीज़ जो बीमारी से पहले के अंदर हम कवर कर सकते हैं, वो क्या है, कि जब हम सेहतमंद हैं, जैसे आज अल्लाह के हुक्म से हमें सेहत है, तो इस सेहत को इबादत में लगाएं। अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने नबी को कहते हैं, फ़ईज़ा फ़रोख्ता फ़नसब, याद है सूरत, जब आप फारिग हो जाएं तो आप इबादत में खुद को खपा दें। हम कहते हैं छुट्टियां सोने का नाम है, चिलिंग का नाम है, गप्पे मारने का नाम है, टाइम किलिंग का नाम है। अल्लाह कहते हैं अब नबूवत के काम है, अब दावत का काम पूरा हो गया, अब आपको अल्लाह ने जो मिशन दिया था पूरा हो गया, अब अपनी पर्सनल इबादत करो। ये चीज़ आप कहेंगे बीमारी से पहले कैसे करें, क्योंकि इबादत का असर होता है। जितना इंसान अल्लाह की इबादत, खास तौर पे देखे ना 5 वक्त की नमाज, मर्द है तो जमात से मस्जिद में जाके पढ़ता है, फ्रेश रहेंगे। आप में से किसी को अपने ससुर या चचा या ताया या नाना नहीं याद आते? मेरे सामने तो माशाल्लाह एक बुजुर्गों का पूरा तसव्वुर आ जाता है, फजर से पहले उठना, सुबह उठ के मोस्टली बुजुर्ग शावर लेते, फिर उसके बाद तहज्जुद, तहज्जुद के बाद चल के मस्जिद जाना, मस्जिद में रहे, सूरज निकलने तक मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ा, दुआएं पढ़ी, और उसके बाद वॉक। ये मैं अपने नाना का अपने तसव्वुर में रख के आपको सुना रही हूँ। सबको पता होता था कि अब्बा जी 4 बजे घर से गए हैं, अब मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे 6 तक, फिर सनराइज तक 7 बजे, फिर वहाँ से उठ के जाएंगे, पूरा एक चक्कर लगा के 8 बजे 8:15 के करीब घर आना है, जिसको आप कह लें कि वॉक करके आनी। टेबल पे पहले से अपना रख के गए होते थे, या दूसरा भी कोई रखे तो एप्पल, फ्रेश सेब, और नानी अम्मी का मुझे याद आता है कि उन्होंने बादाम रात को भिगोने, 7 खाने हैं, यदि हमारे लास्ट शोर में कि एक बंदे ने 7 बादाम खाने हैं, वो इतने रखे हैं, 7 आपके 7 आपके, सुबह उठ के उनको छीलना, बादामों को और थोड़ी इलायचियाँ घिस के दूध में डाल के, आप सोचें उनकी सेहत और हमारी। वो सेब खा के फिर थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट करना, मुझे याद आ रहा है, फिर शावर लेके एक छोटा सा फुलका, बिल्कुल ना उस पर कोई घी, हल्का सा ऊपर देसी घी का लगा के, तो मेरा लाल दही के साथ चाहिए, ये कुछ खाते थे बड़े। और माशाल्लाह मेरा लाल कि लेट 80s में उनकी यानी डेथ हुई है। आखिरी दिनों तक अपनी ज़िंदगी के सेहतमंद, और भी कई लोग हैं आपके भी होंगे, चलते हमारे वो बुज़ुर्ग के जो अभी रिसेंटली उनकी 1.5 साल पहले डेथ हुई है, आई थिंक से 93 के गए, कैन यू बिलीव, अभी तक वॉक करके जाते थे, साइकिल भी चलाते थे और ग्लासेस के बगैर अखबार पढ़ते थे। आज हमारे बच्चों की इतने मोटे मोटे ग्लासेस, हमने उनको इतनी रेडिएशंस में रख दिया, एक ऐसी प्रेजेंटेशन मौजूद है कि जिसमें ये जो हमारे गैजेट्स से जो रेस निकलती है ना, इसका बॉडी पे इफेक्ट दिखाया गया। अब मेरे सामने भी कंप्यूटर रखा हुआ है, इधर सेलफोन रखा है, इधर माइक रखा है, इधर स्पीकर रखा है, ये सब रेज मेरे अंदर जा रही है ना। और उसमें उन्होंने बताया था कि जब इन सारी चीज़ों को हम इनहेल करते हैं ना, तो इसको ज़रा निकालने का तरीका ये है कि फिर ज़मीन पे जाके अपने सर को रख दो, जब सजदे की कैफियत में हम होते हैं ना, तो हमारे जिस्म से सब ये रेज निकल जाती हैं। और उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि अगर दुनिया पूरी के जो मिडल पोर्शन है उधर जाके अगर कोई ये अमल करे, तो मैक्सिमम उसके जिस्म से ये ख़राब रेस निकल जाएंगी। और आप कहते हैं वो कौन सा स्पॉट है? हाजल बला दिल अमीन खाना कहवा। तो इबादत में जो लोग अपने आप को खपा देते हैं ना, अल्लाह उनको बीमार नहीं करता, ये तो 100% अल्लाह का फैसला है। आप जितने हमारे असलाफ थे, आइमा कराम थे, बुज़ुर्ग थे दीन वाले, आप उनकी ज़िंदगी को देखें, तहज्जुद गुजार के चेहरे पे एक सुकून होता है, एक चमक होती है, शाइन होती है। लाइफस्टाइल सिंपल रखें, बच्चों के लिए घर में कम से कम बाहर की चीज़ें रखें, जो रोटी सालन फ्रेश आप, और बिल्कुल ना इतना भूनें ना इतना जलाएं कि टेस्ट कॉन्शियस होके 70 मसाले डाल देते हैं, चीज़ का टेस्ट ही ख़त्म हो गया। एक सिस्टम बनाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम सब बीमारियों से बचें। आप कहेंगे हम तो पता नहीं क्या पढ़ने आए थे, लेकिन ये तो कुछ और ही पढ़ा दिया। तो देखिए, हर चीज़ जिसम में जो जाती है उसका असर आता है कि नहीं आता। तो इंशाल्लाह इस तरह की बातें अल्लाह ताला के हुक्म से करते रहें, दुआएं लें लोगों की। अगली आखिरी बात, यानी अब मैं इसको रैप अप कर रही हूँ इस टॉपिक को, कि बीमारी से पहले करने वाले में दूसरों से भी दुआएं लें। जब आप माँ बाप की खिदमत करते हैं, सास ससुर की खिदमत करते हैं, उस्तादों की बात मानते हैं, तो दिल से दुआएं निकलती हैं। तो अगर आप और मैं चाहते हैं ना कि हम बीमार ना हों, तो दुआएं लें। और हमें नहीं पता कि हम दुआएं लेते हैं कि आहें लेते हैं। अगर आप बच्चों में से कोई बच्चा ये बात सुन रहा है, तो वो बच्चा अपने माँ बाप की दुआएं ले। यकीन करें, पहले लोग दुआएं भी इतनी खूबसूरत देते थे, हयाती हो, बच के रहो। मैंने तो आज उस तरह की दुआएं भी नहीं माँ को देते देखा, सलवातें ही सुना रही होती हैं बच्चों को। वजह क्या है कि इतना हेस्टी किस्म का हमारा लाइफ स्टाइल हो गया, बच्चे हाइपर हो गए। तो अब ऐसे बच्चों को दुआएं कहाँ देंगी? वो माएँ दिल से तो देती होंगी, कोई माँ बददुआ नहीं देती, लेकिन अमूमन वो जो प्यारी माएँ थी, मोहब्बत मीठी बांटने वाली शरीनी, वो नहीं दिखती। तो दुआएं दें और लें, दूसरों के लिए दुआ करें, आपके लिए अल्लाह करेगा। इस तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को बचा के रखें। फिर एक आखिरी बात पे मैं इस टॉपिक को क्लोज करूंगी कि जब कभी किसी बीमार को देखें तो दुआ मांगें। वो दुआ कौन सी है वो आप मेरे साथ दोहराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तिलाकी बिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफदीला। इस दुआ का मतलब यह है कि सारी तारीफें उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझे आफियत दी उस तकलीफ से जिसमें तुझे मुबतला किया, और मुझे सारी मखलूक पे अल्लाह ने फौकियत दी, दूसरों से मुझे अच्छा रखा। हदीस में आता है कि किसी भी तकलीफ़ ज़्यादा बंदे को देखो, तो अगर ये दुआ कर लो उसको देख के, कोई भी, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई चोरी हो गई, किसी का कुछ खो गया, उसको देखकर आप दुआ मांग लें कि अल्लाह तू मुझे इस तकलीफ़ से बचाना, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का वादा है उस बंदे को वो तकलीफ़ नहीं होगी। तो हम क्या करें, विज़िट करें सिख लोगों को। अगला टॉपिक हमारा बहुत खूबसूरत है कि जिसमें हम देखेंगे कि क्या करना है, आप बीमार हो गए हैं या दूसरे बीमार हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम अगली नशिस्त में लेंगे। लेकिन यह है कि आप दूसरों को जब विज़िट करें तो ये दुआएं मांगें, और आप महसूस करेंगे कि आपकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और अपने आप को अल्लाह के दीन की खिदमत में खपा दें। किताब सीखने, सिखाने, पढ़ने, लोगों की खिदमत करने, इंसानियत के अंधेरे दूर करने में लगा दें, आप देखेंगे कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपकी सारी बीमारियां दूर करेगा। बाज़ दफ़ा हम किसी जुर्म की पादाश में बीमार होते हैं और मज़ीद जुर्म ये करते हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ते, क्लास में नहीं आते, और अगर कभी इसके बावजूद सब करने के भी आ जाए ना, तो नेगेटिव ना हों बल्कि ये सोचें कि इस दुआ के पढ़ने ने मुझे सिर्फ इतना बीमार किया, कि सिर्फ मेरे पेट में दर्द हुई, और अगर मैं ये दुआ ना पढ़ती तो हो सकता है कि मेरे पेट का ऑपरेशन हो जाता। ठीक है, तो बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहें और अपने करने का काम करते जाएं। इसी दुआ में आयतुल कुर्सी बहुत खूबसूरत दुआ है। ठीक है, दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस सारे पढ़ने पढ़ाने के दौरान सेहत दे कि हमारा बीमारी की वजह से कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। ठीक है, जजाक अल्लाह खैर, वासन जजा।